अप्रैल 15, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। लूका 11:1। परमेश्वर के वचन में एक दृढ़ विश्वास होना और उसकी प्रतिज्ञाओं को अधिकार पूर्वक अपने लिए ले लेना एक शक्तिशाली आत्मिक हथियार है। आरंभिक कलीसिया इसी तरह प्रार्थना करती थी। प्रेरितों के काम 4:23-31। उनका डर और शक दूर हो चुका था और वे परमेश्वर के वचन और परमेश्वर द्वारा उसके लोगों को दी गई प्रतिज्ञाओं में एक दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना करते थे। हमें उन सभी प्रतिज्ञाओं को थामे रहने की ज़रूरत है जो हमें उत्साहित करने के लिए दी गई हैं। तब हम अपने बीच में परमेश्वर को उसकी विश्वास योग्यता के साथ काम करता हुआ और हमें दी गई प्रतिज्ञाओं को पूरा करता हुआ देख सकेंगे। प्रेरितों के काम 4:23-31 में आरंभिक विश्वासी परमेश्वर की महानता में भरोसा रखते थे और परमेश्वर द्वारा दाऊद को दी गई प्रतिज्ञाओं को अधिकार के साथ अपने लिए ग्रहण करते थे। प्रेरितों के काम 4:25। उनका यह विश्वास था कि जो कुछ हुआ था वह प्रतिज्ञाओं का पूरा होना ही था और इसलिए उन्होंने प्रार्थना की, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरे वचन को पूरी निर्भयता से सुनाए। पद 29। उन्होंने अपने शत्रुओं का बुरा नहीं चाहा, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से ये साहस मांगा कि वे लोगों के सम्मुख जाकर मसीह का प्रचार कर सकें। जब लोग हमारा विरोध करें तो हमें उनसे बदला लेने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अधिकार के साथ संदेश सुनाने के साहस को अपने लिए ले लेना चाहिए। निरंतर प्रार्थना करते रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 का अर्थ है कि कभी कभी नहीं बल्कि हर एक मामले के लिए, बल्कि छोटी छोटी बातों के लिए भी लगातार प्रार्थना करें। वचन बांटने से पहले हम प्रार्थना कर सकते हैं, हे प्रभु मेरी मदद कर, मेरी जीभ को छू और मेरे गले और होंठों को छू। तब हम एक अचेत रूप में यह पाएंगे कि हमारे हृदय मामूली बातों में भी परमेश्वर को पुकारने वाले बन गए हैं। हम प्रेरितों के काम 12:5 में एक और आत्मिक हथियार पाते हैं। लौ लगाकर प्रार्थना करना भी एक आत्मिक हथियार है, सिर्फ कभी कभी की जाने वाली प्रार्थना नहीं, बल्कि बोझ के साथ मानव प्रसाव की पीड़ा में प्रार्थना करना। ऐसे समय होते हैं जब हमें पीड़ा में पड़े लोगों के लिए, चाहे वो पीड़ा बीमारी की हो या उसकी कोई दूसरी वजह से हो, अपने हृदयों में तड़पाने वाली पीड़ा के साथ प्रार्थना करनी होती है। इसी तरह हम प्रेरितों के काम 13:2 में पढ़ते हैं, जब वे उपवास और प्रभु की आराधना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। उन्होंने मिलकर परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जानने के लिए प्रार्थना की थी कि वे अपने लिए और अपनी सेवकाई के लिए उसकी भावी योजना को जान सकें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला था। वे इस बारे में तब तक प्रार्थना करते रहे जब तक परमेश्वर ने उन्हें एक निश्चित जवाब नहीं दिया। हमारे व्यक्तिगत मामलों के लिए और हमारी सेवकाई के लिए भी हमें प्रार्थना में तब तक तड़पना चाहिए जब तक परमेश्वर की आवाज़ न सुन लें। आधी रात के समय पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। प्रेरितों के काम 16:25। अपनी पीड़ा में उन्होंने ये नहीं चाहा था कि उनके सताने वालों को कोई हानि हो या अपने ऊपर परमेश्वर का कोप उतर आए। वे परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे और अधिकार पूर्वक बंदीगृह के दूसरे बंदियों और दारोगा के उद्धार की भी मांग कर रहे थे। उन्हें यकीन था कि परमेश्वर ने उनके जीवनों में उस पीड़ा की अनुमति इसलिए दी थी कि उस बंदीगृह में उद्धार का काम पूरा हो। उन्होंने अपने शत्रुओं पर परमेश्वर के कोप के लिए नहीं, बल्कि उनके उद्धार के लिए प्रार्थना की। शैतान हमारे खिलाफ जो भी हथियार इस्तेमाल करे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके सभी हथियारों को नाकाम कर देगा। परमेश्वर के सेवकों के रूप में हमें शत्रु की उन सभी युक्तियों के प्रति अति संवेदनशील रहना होगा जो वह अंत के इन दिनों में इस्तेमाल करेगा। ये युक्तियाँ परमेश्वर के लोगों में आत्मिक गरीबी और परमेश्वर के सेवकों में आत्मिक कमजोरी लाने के लिए होती हैं कि उन्हें ज्योति में संतों के साथ उनकी विरासत का पूरा हिस्सा लेने से रोका जा सके। युद्ध के अपने आत्मिक हथियारों को प्रभावशाली रूप में इस्तेमाल करना सीखने से ही हम शत्रु को पूरी तरह हरा सकेंगे।